लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों द्वारा दुराचार को सहन किया। हमारी अर्थ याचना है कि कलीसिया के भीतर ही वे अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकें तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने चालीसा काल के तीसरे रविवार को संत पेतरस महागिरजाघर के प्रांगण में देवदूत प्रार्थना हेतु जमा हुए सभी विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
प्रिय भाई एवं बहनों, सुप्रभात।
Questa domenica il Vangelo ci presenta uno degli incontri più belli e affascinanti di Gesù.
इस रविवार का सुसमाचार पाठ हमारे लिए यीशु के एक अति सुंदर और मनमोहक मिलन को प्रस्तुत करता है, जहां हम उन्हें एक समारी नारी से वार्ता करते हुए पाते हैं। यीशु और उनके शिष्यगण समारिया में एक कुआं के निकट ठहरे, जहां एक नारी पहुंची और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो। संत पापा ने कहा, मैं इस अभिव्यक्ति मुझे पानी पिला दो पर चिंतन करना चाहूंगा। यह दृश्य हमें यीशु को प्यासा और थका हुआ दिखलाता है, जहां समारी नारी उन्हें दिन की तेज धूप में कुआं के निकट दोपहर में पाती है। यह ईश्वर के मूलभूत रूप को व्यक्त करता है। यीशु हमारे समान बनते हैं, उन्हें हमारी तरह प्यास लगती है। इस दृश्य पर चिंतन करते हुए हम अपने आप से कह सकते हैं, ईश्वर जो मेरे स्वामी हैं, वे मुझसे बातें करते हुए पानी पीने की मांग करते हैं।
Assetato come noi, soffre la nostra stessa arsura.
वे मेरी तरह ही प्यासे हैं, उन्हें मेरी प्यास है। प्रभु तो सचमुच मेरे निकट रहता है, तू मेरे समान निर्धन है, तू मुझे मेरे कुछ नहीं से बुलाता है, मेरे सबसे निचले स्तर से, जहां मेरे निकट कोई नहीं पहुंच सकता है। वास्तव में यीशु की प्यास केवल भौतिक नहीं है, यह हमारे लिए उनकी सबसे गहरी चाह को व्यक्त करती है। यह सारी चीजों से बढ़कर हमारे प्रेम की प्यास को व्यक्त करता है। यह हमारे लिए उनके जीवन की चरम सीमा में उनके दुख भोग क्रूस में उनके मरण से पहले प्रकट होता है, जहाँ यीशु कहते हैं, मैं प्यासा हूँ। संत पापा ने कहा, लेकिन यीशु जो पानी की मांग करते हैं, वे हमें स्वयं पीने के लिए देते हैं, जिससे वे समारी नारी से मिलने पर उसे संजीवन जल के बारे कहते हैं, जो पौत्र आत्मा से प्रवाहित होता है और जिससे वे क्रूस से लहू और पानी के रूप में अपने बगल से बहाते हैं। यीशु जो प्रेम के प्यासे हैं, हमें अपने प्रेम से तृप्त करते हैं। वे हमारे लिए वैसा ही करते हैं जैसा कि उन्होंने समारी नारी के साथ किया। वे हमारे दैनिक जीवन में हमसे मिलने आते हैं, वे हमारी प्यास में शामिल होते और हमें संजीवन जल देने की प्रतिज्ञा करते हैं, जो हम में अनंत जीवन का स्रोत बनता है। संत पापा ने कहा, मुझे पानी पिला दो, यह दूसरा पहलू है। उन्होंने कहा, यह शब्द केवल समारी नारी को किया गया एक आग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह एक निवेदन है जिससे हम बहुत बात छिपा हुआ पाते हैं। यह हमारे प्रतिदिन के जीवन में उठता और हमें अपने दूसरे भाई बहनों की चिंता करने को कहता है। पानी पिलाने की मांग हमारे बहुत सारे परिवारों के बारे, कार्यस्थल में, दूसरे स्थलों में, जिन्हें हम बहुत देखते, जिन्हें हमारी निकटता, ध्यान, सुनने की प्यास की आवश्यकता के बारे में कहती है। वे जो ईश्वरीय वचन की प्यासे हैं और जो कलीसिया में समाधान की खोज करते हुए पूछते हैं कि पानी कहाँ से पिया जाए, मुझे पानी पिला दो, हमारे समाज की एक पुकार है, जहाँ हम एक जल्दबाजी, भौतिकता हेतु अतिशीघ्रता और उदासीनता में शुष्कता तथा आंतरिक शून्यता को पाते हैं। मुझे पानी पिला दो, यह हमारे बहुत सारे भाई बहनों की पुकार है जो जीवन जल की कमी का अनुभव करते हैं, जबकि हम अपने आम घर को दूषित और कुरूप करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह स्वयं को थका और सूखा पाता है। इन सारी चुनौतियों के समक्ष आज का सुसमाचार पाठ हम प्रत्येक जन को संजीवन जल प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप हम दूसरों के लिए उमंग का स्रोत बन सकते हैं। इस तरह उस समारी नारी की भांति जो अपने घड़े को कुएं के पास छोड़कर गांव के दूसरे लोगों को बुलाने जाती है, हम भी केवल अपनी प्यास बुझाने तक सीमित नहीं रहेंगे। जहां हम अपने आप को भौतिक, बौद्धिक या सांस्कृतिक रूप में प्यासे पाते हैं, बल्कि यीशु से मिलन की खुशी से हम दूसरों की प्यास को बुझाने में सक्षम होंगे। हम दूसरों के जीवन को अर्थपूर्ण बना पाएंगे, मालिकों की भांति नहीं लेकिन सुसमाचार के सेवक की तरह, जो हम में निरंतर प्यास जगाता है। हम दूसरों की प्यास को समझने के योग्य होंगे और उस प्रेम को उनके साथ साझा करेंगे जिसे ईश्वर ने हमें दिया है। संत पापा ने कहा कि मैं स्वयं से और दूसरों से यह सवाल पूछता हूँ कि हम दूसरों की प्यास को समझते हैं, लोगों की प्यास को, परिवारों की प्यास को, पड़ोस के प्यास को। आज हम स्वयं से पूछें, क्या मैं ईश्वर के लिए प्यासा हूँ? क्या मैं उनके प्रेम की जरूरत महसूस करता हूँ जो जीवन जीने के लिए पानी की तरह है? और तब मैं जो प्यासा हूँ, क्या मैं दूसरों की प्यास की चिंता करता हूँ जो आध्यात्मिक और भौतिक रूप से प्यासे हैं? तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा, माता मरियम हमारे लिए निवेदन करें और इस मार्ग में बढ़ने हेतु हमारी सहायता करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने प्रभु के लिए 24 घंटे प्रार्थना पहल को पुनः करने की घोषणा की।
Venerdì prossimo, 17 marzo e sabato 18 si rinnoverà in tutta la chiesa l'iniziativa 24 ore per il Signore.
पहल को अगले शुक्रवार को आराधना और पाप स्वीकार संस्कार के साथ संपन्न किया जाएगा। निष्कलंक माता मरियम को समर्पित प्रार्थना, जिसको पिछले साल किया गया था, उसकी याद करते हुए संत पापा ने विश्वासियों का आह्वान किया कि वे एकजुट होकर युद्ध से पीड़ित लोगों के प्रति एकात्मकता प्रकट करें। संत पापा ने विश्वासियों का आह्वान किया कि वे विश्वास में एक बने रहें एवं युद्ध से पीड़ित लोगों के लिए एकात्मकता प्रकट करें, विशेषकर संतप्त यूक्रेन के लोगों के लिए। संत पापा ने यह आह्वान उस समय किया जब उन्होंने इस साल के लिए प्रभु के लिए 24 घंटे प्रार्थना पहल की घोषणा की। इस पहल को हर साल चालीसा काल में किया जाता है, जिसमें आराधना की प्रार्थना एवं पाप स्वीकार संस्कार के लिए विशेष अवसर दिया जाता है। प्रार्थना पहल की शुरुआत शुक्रवार 17 मार्च की शाम को होगी और यह शनिवार 18 मार्च तक चलेगी। संत पापा फ्रांसिस ने प्रभु के लिए 24 घंटे प्रार्थना की शुरुआत अपने परमाध्यक्ष काल के पहले वर्ष में किया है। इस अवसर पर दुनिया भर के गिरजाघर पूरे दिन खुले रहेंगे ताकि विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों को आराधना में ठहरने और पाप स्वीकार संस्कार में भाग लेने का अवसर मिल सके। रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान संत पापा ने यूक्रेन और रूस को निष्कलंक माता मरियम के हृदय को समर्पण की याद की, जिसको पिछले साल प्रायश्चित धर्म विधि के दौरान शांति के लिए एक विशेष प्रार्थना के साथ संपन्न किया गया था। संत पापा ने कहा, हमारा भरोसा कमजोर ना हो, हमारी आशा न डगमगाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा,
Signore ascolta sempre le suppliche che il suo popolo gli rivolge,
कि प्रभु हमेशा अपने लोगों की याचना सुनते हैं जिसको वे उनकी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा उनसे करते हैं। तत्पश्चात संत पापा ने यह भी घोषणा की कि वे प्रायश्चित की धर्म विधि के लिए अगले शुक्रवार की शाम संत मरिया देले ग्राज से अल त्रियोनफाले के रोमन पल्ली में जाकर प्रभु के लिए 24 घंटे की प्रार्थना करेंगे, जिसमें पाप स्वीकार संस्कार भी शामिल होगा। अंत में संत पापा ने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस अपने परमाध्यक्ष कार्यकाल की 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज के दिन 10 साल पहले 13 मार्च 2013 को जॉर्ज मारियो बर्गोलियो पहली बार सफेद कपड़े पहने संत पेत्रुस महागिरजा घर के केंद्रीय झरोखे में दिखाई दिए। अपने पूर्वाधिकारी सा सम्मान सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के प्रति स्नेहपूर्ण आभार के साथ उनके प्रारंभिक अभिवादन से पहले ही उनके परमाध्यक्ष की कई मुख्य विशेषताएं शामिल थीं। विश्वव्यापी कलीसिया के परमाध्यक्ष और रोम की कलीसिया के धर्माध्यक्ष चुने जाने पर सर्वप्रथम उन्होंने संत पेत्रुस प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों को आशीष देने से पहले उन्होंने उनसे आशीष मांगा और अन्याय, हिंसा और युद्धों से विभाजित दुनिया में एक महान बंधुत्व के लिए प्रार्थना करने को कहा। इस विशेष अवसर पर देश विदेशों के नेताओं और विभिन्न धार्मिक नेताओं, कैथोलिक कलीसिया और अन्य कलीसियाओं के धर्म गुरुओं ने संत पापा फ्रांसिस को शुभकामनाएं दी। वाटिकन न्यूज के संपादकीय निदेशक अंद्रेया तोर्नेली और ओसर्वातोरे रोमानो के निदेशक श्री अंद्रेया मोंदा ने वाटिकन मीडिया द्वारा इस ऐतिहासिक मील के पत्थर के कवरेज की व्याख्या की और संत पापा फ्रांसिस को अपनी शुभकामनाएं दी। रब्बी अब्राहम स्कोर का संत पापा के लंबे समय के दोस्त और उनके साथ ऑन हेवन एंड अर्थ पुस्तक के सह लेखक हैं। इस अवसर पर अपने विचार और शुभकामनाएं साझा की। बोयनस आयरेस के महाधर्माध्यक्ष के रूप में कार्डिनल जॉर्ज मारियो बर्गोलियो का अपने शहर के यहूदियों के साथ बहुत गहरा रिश्ता था। उन्होंने रब्बियों समुदाय के नेताओं और व्यक्तियों के साथ खुले संवाद को शुरू की और कई मित्रता विकसित की जो समय के साथ काफी गहरी होती गई। रब्बी अब्राहम ने कहा, मैं उन लोगों में से हूँ जो उनके साथ इस तरह की मित्रता का आनंद लेते हुए गौरव महसूस करते हैं, जो हमारी नियमित अंतरधार्मिक बातचीत पर आधारित है। संत पापा ने कई अलग अलग स्थानीय आराधनालयों में बातें की, जहाँ उन्होंने सभाओं में गर्म जोशी और आध्यात्मिक रूप से प्रेरक संदेश दिया। विशेष रूप से 1994 में बोयनस आयरस यहूदी सामुदायिक केंद्र की भयानक बमबारी के बाद वे आश्वासन और समर्थन का एक निरंतर स्रोत थे। हालांकि यहूदी समुदाय के साथ संत पापा फ्रांसिस की बातचीत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहूदियों के लिए निर्विवाद रूप से सच्चा प्रेम है, जिसे वे लगातार प्रदर्शित करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकांश यहूदी उसके बारे में ऐसा ही महसूस करते हैं। आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए आपसी स्नेह कैथोलिक और यहूदी संबंधों का आदर्श हो। संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्ष पद के चुनाव की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर अल अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब ने शुभकामना संदेश भेजा। पोप और कैथोलिक कलीसिया के प्रमुख के रूप में आपके कार्यकाल की 10वीं वर्षगांठ पर आपको हार्दिक बधाई देते हुए मुझे खुशी हो रही है। मैं पिछले 10 वर्षों में आपकी शानदार यात्रा की गर्व से सराहना करता हूं, जिसके दौरान आपने सभी मनुष्यों के बीच प्रेम और बंधुत्व के पुल बनाने की कोशिश की है और मानव बंधुत्व के मूल्यों को बढ़ावा देने एवं धर्मों के अनुयायियों के बीच संवाद स्थापित करने के आपके अथक प्रयासों की सराहना करता हूँ। शांति प्राप्त करने का एक आधार जिसके लिए हम सभी तरसते हैं। हमारी दुनिया आज सभी नैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तरों पर चुनौतियों, संघर्षों और कठिनाइयों से भरी है, जो कई लोगों की पीड़ा को बढ़ाती है। इसलिए लोगों और शोषितों की पीड़ा को कम करने के लिए नेताओं और आप जैसे एक सुसंगत प्रतीक व्यक्ति की जिम्मेदारी महान हो जाती है। मैं ईश्वर से शांति की खोज में आपके प्रयासों को आशीर्वाद देने और शांति को बढ़ावा देने और आपसी ज्ञान एकजुटता को मजबूत करने तथा हमारे धार्मिक और नैतिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए आप और सद्भावना के सभी लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्यारे भाई, आप अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और खुशी का आशीर्वाद लें और सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको हमेशा आशीर्वाद दें। कॉन्स्टेंटिनोपल के प्रातिधर्माध्यक्ष बार्थलोम प्रथम ने भी संत पापा फ्रांसिस को परमाध्यक्ष पद की 10वीं वर्षगांठ के लिए बधाई और शुभकामनाएं भेजा और उनकी लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और सृष्टि की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए काम करने हेतु धन्यवाद दिया। इन 10 वर्षों में हमारी मित्रता और सहयोग विशेष रूप से ईश्वर के सभी लोगों को आराम और शांति लाने के सेवा कार्य में और ईश्वर के सभी रचनाओं की देखभाल एवं उपचार को बढ़ावा देने के लिए और हमारे पीड़ित भाइयों और बहनों में हमारे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के स्वागत में हमारा सामान्य विश्वास और प्रतिबद्धता हमें एक साथ करीब लाती है। संत पापा फ्रांसिस के 10 वर्षीय परमाध्यक्षीय काल के अवसर पर कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष ने संत पापा की प्रेरिताई कार्य शैली पर चिंतन किया। उन्होंने कहा, संत पापा में एक गहराई है जो सिर्फ रोमन कैथोलिक कलीसिया के लिए नहीं संपूर्ण कलीसिया के लिए एक वरदान है। वे सच्चाई से समझौता नहीं करते हैं, वहीं हर एक व्यक्ति का अत्यधिक सम्मान करते हैं। उन्हें मैं इन बातों को जीते हुए देखता हूँ। दूसरी बात, उनमें एक उल्लेखनीय नैतिक कल्पना है। वे समस्याओं को एक दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। शायद यह यीशु समाजी पृष्ठभूमि है। कलीसिया के विभिन्न मुद्दों पर आप उनके संग वार्ता करें, वे मानव हृदय को देखते हैं। वे प्रेम करने के मार्गों को भी खोजते हैं जो जटिल हृदयों को खोलती है। तीसरी बात मैं उनमें कहना चाहूँगा जो सरलता उनमें दिखती है, वह एक सच्ची सरलता है। ये 3 बातें उनकी विद्वता और व्यक्तित्व, उनका विशाल हृदय और उनकी सरलता उन्हें उनके संग विशिष्ट रूप से संयुक्त करती है जो कलीसिया से बाहर हैं, जैसा कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने किया। उनमें एक गहराई है को न केवल रोमन कैथोलिक कलीसिया के लिए बल्कि संपूर्ण कैथोलिक कलीसिया के लिए एक वरदान है। इस दिन संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर अपने परमाध्यक्षीय काल के दौरान प्रार्थना करने के लिए सभी को धन्यवाद दिया और इसे करते रहने की अपील की। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, आपकी प्रार्थनाओं द्वारा मेरा साथ देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। कृपया प्रार्थना करना जारी रखें। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।